भारत और इसराइल ने अपने रणनीतिक एवं रक्षा संबंधों को मजबूत करने की बात कही है। मंगलवार को दोनों देशों के बीच रक्षा सहित कई समझौते हुए। दोनों देशों ने उन्नत तकनीक साझा करने और मिलकर रक्षा उपकरण बनाने का समझौता किया है। इजरायली विदेश मंत्री गिडोन सार इन दिनों भारत के दौरे पर आए हुए हैं। मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हुई। इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने पर जोर दिया गया। इजरायली विदेश मंत्री ने भारत की सराहना करते हुए कहा,
India is the world's largest democracy and the fastest growing economy. India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. Our nations already shares a warm friendship.
इस मौके पर एस जयशंकर ने भारत-इजराइल संबंध को मजबूत बताते हुए कहा,
India and Israel have a strategic partnership. And particularly in our case, the term has a real meaning. We have stood together in testing times, and we have created a relationship with a very high degree of trust and of reliability.
भारत ने गाजा शांति योजना को अपने समर्थन की बात दोहराई है। विदेश मंत्री जयशंकर इस बारे में कहते हैं,
We welcome the return of the hostages. And the remains of those who unfortunately lost their lives. India supports the Gaza peace plan.
सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को संरचनात्मक रूप से मजबूत बताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि देश अपनी आर्थिक ताकत की वजह से दुनिया में विशेष स्थान रखता है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने भरोसा बनाए रखने की बात कही।
Even internationally, if people try to bully us or to say anything differently, we have to have our numbers before us. And we as Indians who are contributing to that economy should have that faith that we are achieving these goals ourselves. It's all right for people to taunt us from outside. But we within the country shouldn't decry what our people are doing. For ourselves, all of us are us, for ourselves are doing remarkably well in pushing the economy further and further, and that is why as a country we were able to get out 25 million people out of multi-dimensional poverty.
और अब चर्चा बिहार विधानसभा चुनाव की। 243 सीटों वाली विधानसभा की 121 सीटों पर प्रचार का शोर समाप्त हो चुका है। मंगलवार को प्रचार के आखिरी दिन सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के दिग्गज नेताओं ने मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जंगल राज का डर दिखाते हुए एनडीए को वोट करने का अनुरोध मतदाताओं से किया।
6 तारीख को गलती किया तो फिर से 11 तारीख को गलती किया तो फिर से अपहरण, फिरौती, खून और जंगल राज फिर से आएगा। नीतीश बाबू ने 20 साल में जंगल राज को समाप्त किया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के सहारे मतदाताओं से अपने दिल की बात कही।
आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो पाया होता क्या? आज राम मंदिर के निर्माण से खुश है ना? होना चाहिए था ना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। लेकिन बहनों और भाइयों, याद करिए, यही कांग्रेस थी, कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। यही आरजेडी थी जो राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकती थी। यही इनका पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है जो राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लौलुहान करती है। और हम लोग तो तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
महागठबंधन की प्रमुख घटक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने चुनाव आचार संहिता का पालन नहीं होने की बात कही।
ये वक्त है, एक मौका दीजिए आप बिहारवासी कि किस प्रकार से हम जो ये तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार है जिनका यकीन नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर, चेहरा लगा रखा डेमोक्रेसी का। इलेक्शन कमीशन जो है जब चुनाव डिक्लेयर होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, उसके बाद में कोई आप जो है स्कीम को आगे नहीं बढ़ा सकते, रोकना पड़ता है चल रही है तब भी। क्या ये संभव है कि जो कैश बट रहा है 10,000 रुपये महिलाओं को, अभी किस्त जा रही है और 6 तारीख को आपका वोटिंग है, उस दिन भी किस्त जारी होगी महिलाओं को। सबर के परे है कि इतना साथ दे कि इलेक्शन कमीशन का तभी नहीं रोक रहा है।
सत्ताधारी दल के नेताओं के आचरण पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा कहते हैं,
सरेआम इनके प्रत्याशी ने गोली मारी और उसके बाद आप लोगों का दबाव पड़ा, मीडिया का दबाव पड़ा, विपक्ष का दबाव पड़ा, तो उसको हिरासत में लिया गया। और कल क्या हुआ, कल का वीडियो हम सबने देखा। एक कोई ललन सिंह जी हैं, क्या बोल रहे हैं सुना आपने कि विपक्ष के कैंडिडेट को चुनाव के दिन बाहर मत निकलने दीजिएगा। सुना अभी FIR हुई, आप ही लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि आपने दबाव डाला कि FIR हुई।
अंत में चर्चा छत्तीसगढ़ में हुए रेल हादसे की, जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई है। मंगलवार को बिलासपुर जिले में एक पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रेन का पहला डिब्बा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में मृतकों का आंकड़ा 11 तक जा पहुंचा है, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। शुरुआती आकलन के अनुसार सवारी ट्रेन ने खतरे की स्थिति के बावजूद सिग्नल को पार कर लिया था। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।